हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 9। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्ति अनभिष्वंगः पुत्रधार गृहादिषु। इसके विषय में हमने कल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और दोष जितने भी हैं उनके आसक्ति उनके अंदर कोई हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसके अंदर? पुत्र धारा ग्रहादिशु, पुत्र हो हमारी स्त्री हो हमारे घर हो उनको उनके अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें ये सोचकर अपने परिवार के साथ समस्त कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये जिम्मेदारी दी है तो हमें उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और सबके साथ मिलकर भगवान की भक्ति एवं अर्चना करनी चाहिए और भगवान को प्रसाद अर्पण करके फिर भोग लगा के उसके बाद खुद खाना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 10 में कहते हैं, 13 टेक्स्ट नंबर 10, नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च नन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी। नित्यं च समचित्तत्वं, नित्यं का मतलब होता है कंटिन्यूअस अर्थात निरंतर। भगवान कहते हैं नित्यम च समचित्तत्वम, यानी कि आप जो ज्ञान है जो ज्ञानी होता है ना उसे चाहिए कि कंटिन्यूअस समचित्त, उसका जो चित्त है ना वो सम होना चाहिए। कब सम होना चाहिए? इष्टान, यहाँ पर लिखा हुआ है नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तितु। इष्ट का क्या मतलब होता है? इष्ट का मतलब होता है जो आपको अच्छा लगता है, आपकी इच्छित वस्तु जब आपको प्राप्त होती है, और अनिष्ट का मतलब होता है अवांछित, यानी कि जो आपको पसंद नहीं है। अर्थात भगवान का तात्पर्य ये है कि ज्ञानी जो होता है उसे अपने इच्छित और अनिच्छित जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, भले उसे अच्छा सिचुएशन जो भी उसके सामने क्रिएट होती है भले उसकी मर्जी की नहीं होती है, लेकिन उसे ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कि मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल, मुझे इस चीज में कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही है, वो मेरा दोष है। लेकिन बिकॉज कृष्णा इज द बेस्ट प्लानर, कृष्ण ने यदि ये सिचुएशन क्रिएट की है तो कृष्ण जो भी करता है उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छा ही होती है। मुझे समझ में नहीं आ रही है उसमें मेरी समझ की गलती है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो हमेशा क्या कहता है? थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज। जो भी सिचुएशन जो वर्तमान समय में जो भी क्रिएट हुई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट मीन्स भले वो अच्छा उसके पसंद का है भले नहीं भी उसके पसंद का है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, जो भी उसे प्राप्त होता है। और आगे बहुत ही सुंदर से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इस सारे ज्ञान में ना सबसे ज्यादा मजे की चीज ये है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैचा नन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी। मई का मतलब होता है मुझ में। देखो कृष्ण बोल रहे हैं मुझ में, यानी कि कृष्ण के अंदर, नथिंग एनीबॉडी एल्स, कृष्ण के अलावा और कोई ना परमात्मा की बात हो रही है ना निराकार ब्रह्म की बात हो रही है। कृष्ण बोलते हैं मई अनन्य योगेन, अनन्य योगेन मतलब अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति को उसी अनन्य भक्ति के बारे में अक्सर आप लोग पूछते हो ना, इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत क्लियर कहने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं मई अनन्य योगेन, अनन्य भक्ति से भक्ति अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी का मतलब होता है बिना व्यवधान के। इसके अंदर अनन्य, अन्य मतलब और कोई नहीं, व्यभिचारिणी का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, लेकिन अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब होता है ऐसी भक्ति जिसके अंदर कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी ऐसा ना हो जिसमें कोई इंटेंशन हो, यानी कि कृष्ण हमारी पूरी की पूरी श्रद्धा, पूरी की पूरी भक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो, ज्ञानी जो होगा ना वो क्या करेगा, मई चानन्य योगे न भक्तिर व्यभिचारणी, वो कंटिन्यूअस क्या करेगा, केवल सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए अनन्य भक्ति को प्राप्त करेगा, वह ज्ञानी है। तो श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। नित्यम च समचित्तम, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं सुख दुख भौतिक जीवन के को दूषित करने वाले हैं, यानी कि जो हमारी ये साधारण जीवन जीवन है उसमें सुख दुख तो आते हैं, मनुष्य को चाहिए कि उन्हें सहना सीखे, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश दिया गया। अभी उपदेश कहाँ पर दिया गया, 2.14 याद है आप लोग, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाहा आगमा पाइनु अनित्याहा सांस्कृतिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 14 श्लोक में हमें बताया था कि जो सुख और दुख हैं वो तो भौतिक जीवन के पहलू हैं, वो तो आते रहते हैं, तो इन्हें जो धीर पुरुष होता है वो इन्हें सहन करना सीखता है। जिस तरह सर्दी और गर्मी की ऋतुओं को हम कैसे सहन कर लेते हैं, उसमें विचलित नहीं होते, तो सुख और दुख में भी सम नित्यम च समचित्त, उसी तरह से हमें सम रहना चाहिए सुख और दुख में। आगे श्री पापा जी बोलते हैं बहुत ही सुंदर बात है, हमें समझनी चाहिए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि कोई भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबिंब नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि ये तो भौतिक जीवन की शैली है। भगवान श्री कृष्ण ने ये जो भौतिक जगत है वो बनाया ही ऐसा है जिसमें सुख और दुख आते रहेंगे, तो इनको आने से तो कोई नहीं रोक सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में संभाव बनाए रखे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नित्यम च समचित्तत्वम, तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे पास जो भी सिचुएशन हो रही है उन दोनों ही दशाओं में समभाव बनाए रखना चाहिए। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ना, 10 श्लोक, श्लोक नंबर 10 की पहली लाइन में, नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु, ये इष्टानिष्टोप मतलब इच्छित और अनिच्छित, उसके बारे में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जब पसंद की चीज आती है तो खुश होते हैं और जब अनिच्छित घटना घटती है तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो, यदि वाकई में हम चाहते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो और ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार यदि चलाना चाहते हैं, तो ये बातें हमें विस्तृत नहीं करनी चाहिए, नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ज्ञानी को पता होता है कि सुख और दुख तो आने ही हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि देखो, अब जैसे कल आपका क्वेश्चन था ना कि क्या हम इस स्टेज को पहुंचेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हाँ, मई चानन्य योगे न भक्ति रव्यभिचारिणी, यदि आप अटूट भक्ति का अभ्यास करोगे, यदि आप भक्ति के अंदर मई चानन्य योगे न अनन्य योगे न अटूट भक्ति का, भक्ति रव्यभिचारिणी, ऐसी भक्ति जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो, उसका यदि आप अभ्यास करेंगे तो विपत हुए बिना यानी गुमराह कभी नहीं होगे। कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों। अब यहाँ पर देखो श्री प्रभुपाद जी हमारे हर क्वेश्चन को कितना अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं कि भक्ति किस तरह से की जाती है, उसको अभी क्लियर कर रहे हैं शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र में क्या लिखा है कि भक्ति का क्या मतलब होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम के कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना चाहिए, जैसे नवे अध्याय में अंतिम श्लोक में वर्णित हुआ है। इस विधि के का अनुसरण करना चाहिए। भक्ति के लिए नवे अध्याय का श्लोक नंबर 34 अंतिम जो श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। पता मुझे कैसे खबर पड़ी? क्योंकि भगवान ने यही एक ही श्लोक ऐसा है जो भगवत गीता में दो दफा कहा, 18वां अध्याय श्लोक नंबर 65 और 9वां अध्याय श्लोक नंबर 34। इन दोनों की फर्स्ट लाइन एकदम सेम है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन्मना भव मत भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु, कि मेरे मन को मुझ में लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, और मामे वैश्यसी त्वैवं आत्मानं मत्परायणः, इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो तरीका बताया है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, और इस तरह अविभिचारी भक्ति जब हम करेंगे तो हम ज्ञान के स्टेज तक पहुंचेंगे। अब देखिए, हम सब साधारण लोग हैं ना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो रेज होता ही है कि हम कैसे इस स्टेज तक पहुंचे जब इच्छित और अनिच्छित जो भी प्राप्त होगा उसको हम सम रखें, दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो। ये साधारण लोग हैं ना हम, तो ये सब तो बहुत ऊंची बातें हैं। हम इसको पता नहीं प्राप्त कर सकेंगे, कभी ऐसा दिन आएगा या नहीं आएगा। तो इस सवाल को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 70 में इतना सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। जब मैं श्लोक को पढ़ती हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। आप लोग प्लीज देखिए श्लोक को, ठीक है? चैप्टर 2 श्लोक नंबर 70, दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 70 पेज नंबर 108। बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कहते, खाली श्लोक को ही आप पढ़ोगे ना आपको उसमें इतना अच्छा लगेगा। भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्वत् तत्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान ने कहा आपूर्यमानम, यानी कि आपूर्य का मतलब होता है नित्य परिपूर्ण, एकदम पूर्ण होता है, भरा हुआ होता है। अचल प्रतिष्ठम, दृढ़ता पूर्वक एकदम स्थिर होता है। क्या, कौन? समुद्र मापह, समुद्र जो होता है, देखो समुद्र भरा होता है ना पानी से, ऐसा तो नहीं समुद्र के अंदर थोड़ा सा पानी की जगह होती है, पूरा फुल भरा हुआ होता है। लेकिन आगे भगवान कहते हैं, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत्। लेकिन फिर भी जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है, अलग अलग जगहों से नदियां बहती 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 किसके अंदर आ जाती है, समुद्र के अंदर आती है। तो समुद्र कभी ऐसे तो नहीं बोलता, नहीं भाई मैं तो पहले से ही भरा हुआ, मेरे अंदर नहीं आओ, या मेरे अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं, आप नहीं आओ। लेकिन वो आने देता है, आने देता है समस्त नदियों को, लेकिन अपनी तटों की मर्यादा को तो नहीं तोड़ता। ऐसा तो नहीं कि कभी ऐसा हो कि समुद्र पूरा भर जाए और शहर में आ जाए, ऐसा नहीं होता। अपनी तटों के अंदर ही रहता है, या फिर इतना पूरा, जैसे ग्लास में अगर जितनी क्वांटिटी होती है ना पानी की उतनी हम डालते हैं, और अगर एक्स्ट्रा डालेंगे तो क्या होगा, पूरा स्पिल, पूरा उसके अंदर से गिर जाएगा। इसी तरह लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समुद्र माप प्रविशंति यद्वत्, उसके अंदर आती रहती है ना दूसरी दूसरी नदियां आती रहती हैं, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं होता है, एकदम स्थिर रहता है। आगे उस चीज को भगवान श्री कृष्ण आगे इतना सुंदर तरीके से बता रहे हैं, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् मतलब उसी प्रकार, कामा मतलब इच्छाएं। देखो मनुष्य है, मनुष्य का हृदय रखते हैं, तो इच्छाएं तो स्वाभाविक है ना, इच्छा कैसे प्रकट नहीं होगी, मतलब ये शरीर है, हम साधारण लोग हैं, कोई कोई सन्यासी नहीं है, कोई इतने बड़े योगी नहीं है, कोई इतना बड़ा ध्यान, हम लोग साधारण जीवन गुजार रहे हैं, तो इच्छाएं तो होंगी ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद्वत कामायां प्रविशन्ति सर्वे, तो ऐसे ही भक्त के अंदर भी हर तरफ से इच्छाएं आती हैं, बहुत सारी इच्छाएं उसे विचलित करने के लिए, परेशान करने के लिए आती रहती हैं। लेकिन करना क्या है, सशांति आपनोति यानी कि प्राप्त, लेकिन शांति वो प्राप्त करता है जो इच्छाएं आती रहती हैं, जैसे नदियां आती रहती हैं लेकिन समुद्र जो है वो विचलित नहीं होता है, उसी तरह से इच्छाएं आती रहती हैं, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण से इतना प्यार करता है कि उन इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को शांति प्राप्त होती है, सर शांति आपनोति। आगे जो भगवान श्री कृष्ण ने जो लास्ट वर्ड लिखा है ना, तम बिल्कुल मार डालने वाला, भगवान श्री कृष्ण ने इतना अच्छा बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न काम कामी, काम कामी का मतलब होता है वो कभी भी शांत नहीं रह सकता, वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता जो सदैव अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, देखो बेटा वास्तविक तुम क्या चाहते हो, शांति चाहते हो ना, तुम अपनी इच्छाओं को पूरा। देखो दो व्यक्ति को साथ में खड़ा करते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति इच्छाएं दोनों के अंदर हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहने वाली हूं कि भक्त के अंदर कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन दोनों में से दोनों के अंदर इच्छाएं हैं और दोनों का गोल क्या है, शांति। क्योंकि इच्छाएं जो पूरी कर रहा है उसका भी तो मकसद तो यही है ना कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा और इससे मुझे सुकून मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, इत्मीनान मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा ही सोचेगा ना। तो यहाँ पर वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का कि यदि मैं सुबह से लेकर रात तक डेली गधों की तरह मेहनत करूंगा तो मैं इतना अर्न कर लूंगा कि मैं अपने जीवन को खुश रखने के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करूंगा, और बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करके अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, उनको एक लग्जरियस लाइफ, इतनी जबरदस्त लग्जरियस लाइफ उनको प्रोवाइड करूंगा, और उसके बाद मुझे क्या प्राप्त होगा, शांति। गोल तो शांति है, गोल तो सुख है ना, आखिर पहुंचना तो सेटिस्फेक्शन तक है ना। तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं यदि सारी जिंदगी गधों की तरह मेहनत करूंगा और उसके बाद मुझे जो प्राप्त होगा उससे सुख मिलेगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू दैट पर्सन। अब जो दूसरा है साइड में इसके खड़ा है वो है भक्त, वो क्या सोचता है कि मुझे शांति, उसको भी शांति चाहिए, उसको भी सुख चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, और सेटिस्फेक्शन कैसे मिल रहा है उसको, क्यों, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि मैं क्या हूं, मैं भगवान का अंश हूं, और अंश की संतुष्टि किसमें है, जब पूर्ण संतुष्ट होता है। अंश का मतलब ही ये है, जैसे यथा तरोमूल निषेचनेन, जैसे हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो कभी पत्ते को ये शिकायत नहीं रहती है कि मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, किसी ने मेरा ध्यान ही नहीं दिया। या फिर आप एक पत्ते को निकाल कर पानी के समुद्र में रखो, पानी का पूरा बड़ा ट्रप भर के उसके अंदर रखो, उसको सनलाइट और वायु जो भी चाहिए, खाद वाद देते रहो, लेकिन वो पत्ता खुद से कभी संतुष्ट हो सकता है, असंभव। वो तभी संतुष्ट हो सकता है जब वो अपने पूर्ण के साथ लगा हुआ हो, पूर्ण के साथ उसका योग होगा, और जब पूर्ण संतुष्ट होगा तो वो स्वतः संतुष्ट होगा। उसी तरह से हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, हम सेपरेटली संतुष्ट नहीं हो सकते, अंश कभी पूर्ण से अलग रहकर संतुष्ट होने की कोशिश तो कर सकता है लेकिन हो नहीं सकता। इसी तरह से हम भगवान के अंश है, तो उसने तो देखो दूसरा जो पर्सन था उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, कि मैं इस तरह से खुश हूँ, और भक्त क्या करता है, मैं तो भगवान को खुश करूंगा। खुशी ही, संतुष्टि ही तो गोल है। और जब भगवान खुश होते हैं, उस जब वो नाम जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो संतुष्टि तो उसमें ही प्राप्त हो गई। उसको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको गधों की तरह मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो संतुष्ट हो गया जब उसने देखा कि मेरे गुरु महाराज संतुष्ट हैं। वो संतुष्ट हो गया जब उसने देखा कि मेरा कृष्ण कितना खुश है। वो जब खुद उसके पास खाने, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई ऐसा होता ही नहीं है उसके मन में कि मैं खुद को संतुष्ट करूं, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है। देखो, पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना है दोनों का, दोनों संतुष्टि चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, जो बंदा ये सोचता है कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा तब तक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, इसीलिए वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तो वो एक साइड पर बैठे और उससे पहले जितने भी गधों ने, गधों की तरह जितने भी लोगों ने गधों की तरह मेहनत की है और उस गोल तक पहुंच गए, यानी कि इस ऐसी लग्जरियस लाइफ जो वो अपने लिए चाहता है उस तक वो पहुंच गए, उन सारे लोगों को एक साथ खड़ा करके बिठाए अपने साथ और पूछे कि आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, इतना अच्छा जो गोल आपने बनाया था, किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को एडवोकेट बनना था, किसी को इंजीनियर बनना था, किसी को सीए करना था, किसी को स्टडी में, किसी को क्या करना था, क्या सब, जब उस गोल को पहुंच गए हैं उन सबको बिठाओ, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की है उन सबको बिठाया जाए, और जो अभी कर रहा है वो उनसे पूछे कि चलो मैं भी तो अभी उसी लाइन में लगने वाला हूँ, मुझे भी तो शांति चाहिए, मैं इस तरीके से लेने जा रहा हूँ शांति, आप में से मुझे वो बंदा हाथ खड़ा करके बता दे जिसने अपने जीवन का गोल प्राप्त कर लिया है और उसे शांति प्राप्त हो गई है। तो सारे जो हमारी नजर में जो आजकल के सक्सेस लोग है ना, वो सब हाथ तो क्या मुंडी भी झुका देंगे और कहेंगे शांति प्राप्त नहीं हुई। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी मर्जी से शांति हासिल करना चाहते हैं। शांति तो वैसे हासिल होगी जैसे भगवान कहते हैं, सुख सुविधा ये दो चीजें हैं, सुविधाओं से सुख प्राप्त नहीं होता, ये हमें समझना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो हमें कह रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सशांति आपनोति न काम कामे। अब उन सब ने तो जिनकी तरह हम आज के लोग शांति हासिल करना चाहते हैं या सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब ने तो अपना ना बता दिया निर्णय कि भाई हमें तो प्राप्त नहीं हुई शांति। अब एक साइड पे जो एक भक्त अकेला, ना उसने अपने जीवन में कोई स्ट्रगल की सुख, अपने इंद्रियों को सुख सुखी करने की, ना घरों की तरह मेहनत की, ना एक्स्ट्रा कोई भी चीज हासिल करने के लिए कोई परिश्रम किया, उसके पास ना अच्छा घर था, ना गाड़ी थी, ना लग्जरियस लाइफ थी, लेकिन उससे पूछो क्या तुमने अपने जीवन में सुख हासिल किया, क्या बोलेगा, सुख मुझे तो एक एक क्षण में सुख मिलता है जब मैं कृष्ण को देखता हूँ, जब मैं कृष्ण उच्छिष्ट प्रसाद खाता हूँ, जब मैं भक्तों का संग करता हूँ, जब मैं नाम कीर्तन करता हूँ, मुझे इतना सुख मिलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुखी तवाये। मुझे बारंबार जन्म मरण के चक्कर में भी अगर भगवान डालते हैं और इस तरह की भक्ति प्रोवाइड करते हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वास्तविक शांति तो इसी में है। अब देखो यहाँ पर भी अब भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा, न काम कामी, काम कामी मतलब उससे शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकती है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयत्न करता रहता है। वास्तविक ज्ञान यही है, वास्तविक अपने जीवन का लक्ष्य इसी तरह से प्राप्त करना है। मतलब हम क्या सोचते हैं, जब इतना सब सीखने के बावजूद भी हम साधारण लोगों की तरह अपनी मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं और वही कार्य कर रहे हैं, वही दुनिया में अगर हम लोग है ना सुख हासिल करने की चेष्टा कर रहे हैं, शांति हासिल करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ ये सब जानने का। वही हम चाहते हैं कि हम हम कोई मेहनत नहीं करें, इंद्रियों को संयमित नहीं करें, वही अपने जुबान जुबान को पिज्जा खाना, आंखों को ना फिल्में दिखाना, कानों को वही सॉन्ग सुनाना, अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर रहे हैं, उन्हीं चीजों में अगर आसक्ति है, उन्हीं चीजों में यदि हमें मजा आ रहा है, तो फिर क्या फायदा है ज्ञान हासिल करने का? हमें अपनी जीवन शैली को चेंज करना पड़ेगा। हमें वास्तविक जो भगवान बताना चाह रहे हैं, जो श्री प्रभुपाद सिखाना चाह रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट तो एटलीस्ट करना पड़ेगा कि हमारे जीवन का गोल क्या है। हम जो समय व्यतीत कर रहे हैं, याद रखिए समय वही सफल हो रहा है जो कि शास्त्र के अनुसार, यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते काम कारणात्, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 23 चैप्टर नंबर 16 सोलवां अध्याय श्लोक नंबर 23 में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, देखिए यहाँ पर जो भी लोग शांति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार तो नहीं कर रहे हैं, तो भगवान उनके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं यह शास्त्र मुत्सृज्य, उत्सृज्य का मतलब है नहीं मान रहे हैं, वर्तते काम कारण अपने मनमाने ढंग से कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए न से सिद्धिम अवाप्नोति, उन्हें कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उन्हें कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, न सुखम उन्हें कभी सुख प्राप्त न होगा, और न ही पराम गतिम और न ही कभी परम गति की प्राप्ति होगी। शास्त्र बहुत अनिवार्य है, अगर यह शास्त्र अनिवार्य नहीं होता, यह जरूरी नहीं होता, तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी इतना समय श्रीमद् भगवद गीता को बताने में नहीं लगाते, और ना ही अर्जुन को यह ज्ञान देते, और ना ही हम सबके लिए यह शास्त्र पढ़ना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो तभी सक्सेस होगा, तभी सुख प्राप्त होगा, तभी परम गति प्राप्त होगी, जब हम अपने जीवन को इस शास्त्र के अनुसार बिताएंगे, अपने मनमाने ढंग के जरिए से ये सारी चीजें, ना सुख मिलेगा, ना शांति, ना परम गति। तो देखिए कोशिश सिर्फ इसी के लिए कर रहे हैं, अपने मर्जी से क्यों करके देखे ना, कृष्ण की मर्जी से। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण आगे बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली समझाएं। बहुत अच्छा है ये टॉपिक, कृपया साथ रहिएगा और रोज श्रवण कीजिएगा। हरे कृष्ण।